पृष्ठ संख्या 283 अध्याय 17। अध्याय शीर्षक है ख धार्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता वैलिडिटी ऑफ रिलीजियस नॉलेज। अनुभवों की प्रामाणिकता का प्रश्न एक जटिल समस्या के रूप में सदैव से ही वर्तमान रहा है, विशेष रूप से धार्मिक अनुभवों की प्रामाणिकता का प्रश्न इस वैज्ञानिक युग में और भी जटिल इसलिए है कि विभिन्न बौद्धिक क्षेत्रों में विज्ञान का प्रभाव छाया हुआ है। ऐसे समय में धार्मिक अनुभूतियों और ज्ञान की बात युग की आत्मा के विरुद्ध जान पड़ती है। दार्शनिकों ने ज्ञान से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का निरूपण किया है और सभी सिद्धांत विवाद के ही विषय बने रहे हैं। हम यहाँ उन सिद्धांतों का विवेचन न करके धार्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता के विषय में दिए गए कुछ प्रमाणों का विवेचन प्रस्तुत करेंगे। तर्कों की सहायता से जिस प्रकार कुछ लोग धार्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता का खंडन करते हैं, उसी प्रकार तर्कों की सहायता से ही धार्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता भी सिद्ध की जा सकती है। निम्नलिखित आधारों पर इस विषय में विचार किया जा सकता है। इसमें पहला है मनोवैज्ञानिक आधार पर, दूसरा दैवी प्रकाशन, तीसरा है कुछ विशिष्ट ज्ञान की शाखाओं द्वारा किए गए आक्षेपों का निराकरण करके, चौथा है रहस्यवादियों के व्यक्तित्व के गुणों को प्रकट करके जो स्मारक चिन्ह के रूप में समाज में वर्तमान रहते हैं, और पांचवा है धार्मिक ज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता या मूल्य को प्रकट करके। अब अगला शीर्षक है पहला मनोवैज्ञानिक आधार। इसके अंतर्गत बिंदु अ है अनुभवों की प्रदत्तता। धार्मिक ज्ञान के संबंध में दो प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। प्रथम यह कि क्या धार्मिक ज्ञान के पीछे कोई वास्तविकता या रियलिटी है। दूसरे किसी कसौटी के आधार पर ज्ञान की प्रामाणिकता प्राप्त कर सकते हैं। कसौटी के रूप में मनोविज्ञान को आधार बनाकर ही धार्मिक ज्ञान की वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है। जिस प्रकार प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन की क्रिया में प्रत्यक्षकर्ता बाह्य वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष करके उसके विषय में अनुभव करता है, उसी प्रकार प्रार्थना या अन्य अनुभवों में रहस्यवादी को ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं जो प्रदत्त जान पड़ते हैं। इसी को थूले ने गिवेनेंस कहा है। ऐसी अनुभूतियाँ रहस्यवादी के मन की उपज नहीं होती और उनको उसमें तनिक भी संदेह नहीं होता कि उनकी अनुभूतियाँ वाणी या दर्शन या विजन किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हुए हैं। पृष्ठ संख्या 284। क्योंकि उनकी चेतना में अनुभूति के सभी विषय एकाएक स्वतंत्र रूप में ऐसे ही आते हैं जैसे कि प्रत्यक्षीकरण के विषय। इसी संबंध में थूले ने एक फ्रेंच प्रोटेस्टेंट के अनुभव का इस प्रकार उल्लेख किया है, हम अपने भीतर एक ऐसी सत्ता या बीइंग का अनुभव करते हैं जो कि हमारा स्वयं का नहीं है। हम अपने भीतर नए विचार, ज्ञान एवं दैवी प्रकाशन या रेवलेशन को उत्पन्न हुआ देखते हैं, जो कि हमारे भीतर से नहीं आते। श्री राम कृष्ण भी अपने अनुभवों के विषय में कहते हैं, जैसा चलाती हो वैसा चलता हूँ, जैसा कराती हो वैसा करता हूँ, जैसा बुलवाती हो वैसा बोलता हूँ, नाहम नाहम तू है तू है। उपर्युक्त उदाहरणों से यही सिद्ध होता है कि रहस्यवादी अनुभव प्रदत्त होते हैं, जिसकी उत्पत्ति परामानसिक है, उनके मन की उपज नहीं होते, और इस प्रकार के अनुभव प्रत्यक्षीकरण के ही समान हैं, जिनको तथाकथित कल्पना से सरलतापूर्वक अलग कर सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इस प्रकार के धार्मिक ज्ञान में वस्तुगत सत्यता निहित होती है। शीर्षक है आलोचना। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रदत्त की विशेषता केवल बाह्य सत्य के लिए ही लागू नहीं होती, वरन उन सभी मन की क्रियाओं में भी ऐसा होता है जो कि अचेतन क्षेत्र से चेतन स्तर पर आ जाती हैं। जिस प्रकार स्वप्न अनिश्चित कल्पनाएं तथा प्रातिभ मानस या इंट्यूशंस चेतन स्तर पर आते हैं, उसी प्रकार धार्मिक ज्ञान भी अनुभवकर्ता के लिए बाहर से आते प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार कुछ मानसिक विकृतियों में भी रोगी को उनकी कल्पनाएं और अव्यवस्थित विचार रहस्यवादियों के दर्शन तथा वाणी की तरह बाहर से आए हुए प्रतीत होते हैं, और उनमें उनको वस्तुगत सत्यता जान पड़ती है। इस प्रकार अचेतन से उभरे हुए विचार या वाणी रोगी को ऐसे ही सत्य प्रतीत होते हैं जैसे कि सामान्य व्यक्ति का। शीर्षक है निराकरण। मनोवैज्ञानिकों के इस आक्षेप से हम इस संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस प्रकार के अनुभव अचेतन स्तर से चेतन स्तर पर आते हैं। अतः इसी आधार पर हम तर्क संगत रूप में यह भी कह सकते हैं कि धार्मिक ज्ञान की उत्पत्ति बाह्यगत रूप में ही होती है, और उन अनुभवों के पीछे वस्तुगत सत्य रहता है। यहाँ यह संभव है कि कुछ लोग यह कहें कि जहाँ रहस्यवादी ईश्वर को स्वयं सिद्धि या पास्टुलेट मानते हैं, वहाँ मनोवैज्ञानिक भी अचेतन को केवल एक स्वयं सिद्धि मानते हैं। परंतु यहाँ मनोवैज्ञानिकों के विरोध में यह कहना उचित नहीं जान पड़ता कि उन्होंने अचेतन की परिकल्पना केवल धार्मिक व्यवहारों की एक दूसरी व्याख्या करने के लिए की है। हम देखते हैं कि सामान्य मनोविज्ञान में अचेतन दिनों दिन प्रसिद्ध हो रहा है, और इसकी क्रियाएं व्यवहारों में ठीक उसी प्रकार मिलती हैं जिस प्रकार धार्मिक जीवन में पाई जाती हैं। अतः इस विवेचन से कोई तर्क नहीं मिलता कि हम कल्पना कर लें कि कोई प्रामाणिक तर्क धार्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए मनोवैज्ञानिक प्रदत्त या साइकोलॉजिकल डेटा से नहीं निकाला जा सकता। पृष्ठ संख्या 285। मनोविज्ञान केवल प्रदत्त अनुभवों की कमियों को ही बतलाता है, न कि इसकी यथार्थता को। इसलिए रहस्यवादियों का यह कथन धार्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए अकाट्य ही कहा जा सकता है कि ये अनुभव हमारे मस्तिष्क से नहीं आए हैं, वरन दैवी क्रिया के फल हैं। टेरेसा ने अपने धार्मिक ज्ञान को दैवी क्रिया का फल बतलाते हुए कहा है कि मेरे अंदर जो शांति और आनंद का अनुभव होता है वह न तो भ्रम है और न कल्पना ही। मुझे तीन उच्च प्रकार के ईश्वरीय वरदान प्राप्त हुए हैं। प्रथम, ईश्वर की महत्ता का ज्ञान। द्वितीय, आत्मज्ञान। और तृतीय, सांसारिक वस्तुओं में अनासक्ति। अतः इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि धार्मिक ज्ञान प्रदत्त होते हैं और उनकी वस्तुगत प्रामाणिकता है। अब बिंदु ब है, धर्म काम द्वंद्व का फल नहीं है। मनोविज्ञान अनुभवात्मक विधि का अनुसरण करता है, परंतु धार्मिक अनुभवों के विपक्ष में उनके द्वारा दिए गए तर्कों का संभावित उत्तर देकर भी धार्मिक अनुभव की सत्यता को सिद्ध किया जा सकता है। आधुनिक मनोविकृति शास्त्र के अनुसार स्नायु विकृति की उत्पत्ति वास्तविक संसार में काम शक्ति की असफलता के कारण ही होती है। ऐसे व्यक्ति को संतोष तभी मिलता है जब स्नायु विकृति के लक्षणों को अपने में उत्पन्न कर लेता है। यह विकृति इस प्रकार से काम शक्ति का स्थानापन्न है। संवेगात्मक धर्म में काम शक्ति को लौकिक एवं सामान्य प्रेम में असफल होने पर प्रेम के धार्मिक विषय ईश्वर की ओर पुनः संचालित किया जाता है। दूसरी ओर मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह भी कहा जाता है कि धर्म केवल न्यूरोसिस है, परंतु जो कुछ कारणों से विकृति के रूप में नहीं माना जाता। कुछ मनोविश्लेषणवादियों ने ज्यूरिक स्कूल इसके लिए अच्छा तर्क भी दिया है। उनका कहना है कि रोगी अपने अनुभव बताते हैं कि धार्मिक विश्वास उनके स्वास्थ्य होने में प्रबल शक्ति है। यहाँ तक कि युंग के अनुसरणकर्ता धार्मिक प्रेरणा की शिक्षा को अपनी उपचारात्मक विधि का एक अंग मानते हैं। उपर्युक्त मत से बहुत ही प्रबल रूप में यह सिद्ध होता है कि कामुक द्वंद्व का धर्म द्वारा निराकरण होना प्रकार भेद में स्नायु विकृति के निराकरण से बिल्कुल भिन्न है, और आत्मा का लौकिक प्रेम में असफल होकर ईश्वर में संतोष पाना उस प्रेम से भिन्न ज्ञात होता है जिसमें कल्पना द्वारा लौकिक प्रेम में असफल होने पर प्रेम का विषय उत्पन्न किया जाता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि कल्पना द्वारा उत्पन्न हुए प्रेम में संतोष भी नहीं होता। मनोविज्ञान के बहुत से सिद्धांत यह भी बताते हैं कि कल्पना द्वारा उत्पन्न किया गया प्रेम व्यक्ति की संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कराता है। अतः यदि दोनों प्रकार के प्रेम प्रभावों को देखा जाए तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि दोनों का एक ही कारण नहीं। इससे तर्क सम्मत रूप में यह भी सिद्ध होता है कि कामुक द्वंद्व का धर्म के द्वारा निराकरण व्यक्ति को वास्तविक संतोष प्रदान करता है, और ऐसे फल की प्राप्ति ऐसे तथ्य का परिणाम है जिसका विषय ईश्वर सत्य है। वह मात्र पूजा करने वाले मन की काल्पनिक उपज नहीं है। अब बिंदु स है ईश्वरी खोज की प्रेरणा का पितृ ग्रंथ के आधार पर सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। फ्रायड का कथन है कि ईश्वर की धारणा एक काल्पनिक पिता के रूप में है। बचपन में लोग जिस प्रकार असहाय होकर पिता पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार आगे चलकर जीवन की वास्तविकताओं से बचने के लिए ईश्वर पर निर्भर करते हैं। परंतु फ्रायड की यह धारणा समीचीन नहीं कही जा सकती। पृष्ठ संख्या 286। हिंदू धर्म तथा बहुत से ऐसे धर्म हैं जिसमें ईश्वर और भक्त का संबंध पिता के अतिरिक्त अन्य संबंधों से प्राप्त होता है, तथा इसके अतिरिक्त जैन और बौद्ध धर्म में ईश्वर की कल्पना तक भी नहीं की गई है। पित्त ग्रंथ की समानता से ईश्वर की व्याख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य सभी विकल्पों तथा विचारों से परे है। उसके लिए तो अपरोक्षा अनुभूति ही प्रमाण है। इस प्रकार की अनुभूति के लिए मानव के गतिशील मनस में ही एक प्रेरणा या आवश्यकता अंतर्निहित है, जिसके द्वारा वह अपने स्व तथा विश्व के विषय में जानना चाहता है। इस जानने की क्रिया में ही उसको यह अनुभूति होती है कि यहाँ कोई ऐसा भी वस्तु है जो उसके परे है। कुछ विकृति मस्तिष्क वालों के उदाहरण से ईश्वरी खोज की प्रेरणा का पित्त ग्रंथि के आधार पर सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। अब बिंदु द है मनोविश्लेषणवादियों के दमन प्रक्षेपण आदि के सिद्धांत धर्म की सत्यता के विपक्ष में न होकर पक्ष में ही आते हैं। दमन का यह सिद्धांत यह है कि इच्छाएं और संवेग जो अचेतन मन में दबा दी जाती हैं, उनसे हमारा चेतन तथा अचेतन व्यवहार परिचालित होता रहता है। व्यक्ति उन इच्छाओं तथा संवेगों को बाह्य संसार में प्रक्षेपित करता है, परंतु ये इच्छाएं जब मनस के सतह पर आती हैं तब प्रक्षेपण समाप्त हो जाता है और व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि वह भ्रम में है और अपने ही मनस की बातों को बाह्य जगत में प्रक्षेप कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि हमारे ही मनस का अज्ञान हमको भ्रम में डालता है और इसके रहस्य का ज्ञान ही हमको भ्रम से छुटकारा दिला सकता है। इसी से मिलता जुलता भारतीय मत संस्कार के संबंध में है। हमारे मन के बुरे संस्कार ही दुख के कारण है, परंतु जब वास्तविक स्व का ज्ञान होता है तभी बंधनों तथा दुखों से छुटकारा मिलता है। अंतर इतना है कि मनोवैज्ञानिकों का दमन का सिद्धांत केवल मानसिक रोगों तथा सामाजिक समायोजन तक ही सीमित है, जबकि भारतीय संस्कार का सिद्धांत सभी प्रकार के कुसमायोजनाओं से संबंधित है। इसके अनुसार कुसमायोजन एवं कष्ट इसलिए है कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्व से अनभिज्ञ है और अपने पूर्व संस्कारों का दास होकर कार्य करता है। तो उपाय यही है कि निम्न स्व का उच्च स्व से समायोजन स्थापित किया जाए। स्व तथा अज्ञान को जानने तथा दूर करने के लिए तथा सत्य को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए तो धार्मिक ज्ञान ही आवश्यक ज्ञात होता है। अगला शीर्षक है दूसरा है दैवी प्रकाशन या रिवेलेशन। धर्म आस्था एवं विश्वास का विषय है। धर्म में श्रुतियों का विशेष स्थान है। धार्मिक व्यक्ति की आस्था श्रुतियों में होती है। कहा जाता है कि विभिन्न समयों और देशों में विभिन्न रहस्यवादियों को दैवी संदेश प्राप्त हुए हैं, जिन्हें धर्म ग्रंथों में संग्रहित किया गया है। धार्मिक व्यक्ति आस्था एवं विश्वास के आधार पर इन दैवी संदेशों में निष्ठा प्रकट करता है। धार्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता दैवी प्रकाशन के आधार पर ही सिद्ध की जाती है। धार्मिक ज्ञान में इसलिए भी अविश्वास नहीं किया जा सकता कि सत्य संबंधी सभी ज्ञान ईश्वर द्वारा दिए हुए हैं। स्वयं ईश्वर ने ही श्रुति का प्रकाशन किया है। रहस्यवादियों को अपने आध्यात्मिक अनुभवों में इसका साक्षात ज्ञान होता है। उनके कथन ही बाद में श्रुति के रूप में प्रकट होकर सामान्य व्यक्ति को लाभान्वित करते हैं। यहाँ यह बहुत बड़ी शर्त है कि दैवी प्रकाशन सामान्य व्यक्ति के माध्यम से संभव नहीं है। बहुत ही गहन आध्यात्मिक साधना और अनुभूति इसके लिए आवश्यक है, जो जन सामान्य के लिए नितांत दुर्लभ है। सर्वसाधारण के लिए तो श्रुतियों में आस्था ही आवश्यक है। दैवी प्रकाशन में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान अनुभव की प्रदत्तता से भिन्न है। पृष्ठ संख्या 287। अनुभव की प्रदत्तता मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रत्यक्षीकरण के रूप में सिद्ध की गई है, जबकि दैवी प्रकाशन को रहस्यवादी गहन अनुभूति के क्षणों में साक्षात ईश्वर द्वारा प्राप्त करता है। एक का आधार मनोवैज्ञानिक है, जबकि दूसरे का आधार पूर्णतया धार्मिक है। अगला शीर्षक है आलोचना। दैवी प्रकाशन के विषय में यह कहा जा सकता है कि यह न तो वास्तविक होता है और न तो इसे प्रामाणिक ही कहा जा सकता है। कुछ मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति भी दैवी प्रकाशन को अव्यक्त करते हैं, जिसके कारण इसकी वास्तविकता में विश्वास नहीं किया जा सकता। यह कहा जाता है कि श्रुति स्वयं प्रामाणिकता का दावा करती है, परंतु तर्क के अभाव में स्वीकार करना उचित नहीं जान पड़ता। श्रुतियों में एकता के अभाव के कारण भी अविश्वास होता है। एक ही श्रुति के एक ही धर्मावलंबी अनेक अर्थ लगाते हैं, इसलिए भी इसकी प्रामाणिकता में विश्वास नहीं किया जा सकता। यही नहीं, श्रुति एवं दैवी प्रकाशन में चमत्कार को इतना अधिक महत्व दिया गया है, जिसे वैज्ञानिकता की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। अगला शीर्षक है निराकरण। यह आक्षेप कि दैवी प्रकाशन में तर्क का स्थान नहीं होता उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दैवी प्रकाशन का माध्यम मनुष्य होता है और वह उसको ग्रहण करने में अवश्य ही बुद्धि का उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में दैवी प्रकाशन का तार्किक निर्धारण किया जाता है। इतना अवश्य है कि दैवी प्रकाशन के मानवीय और दैवी तत्व को अलग करना कठिन है, परंतु यह तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि दैवी तत्व मानवीय बुद्धि में आकर विनष्ट तो हो ही नहीं जाता, चाहे वह सीमित भले ही हो जाए। रहस्यवादी दैवी प्रकाशन को आत्मगत रूप से प्राप्त करके भी बाह्यगत रूप में अव्यक्त करता है। धार्मिक ज्ञान सामाजिक रूप में भी प्रकट होता है, जिससे उसकी वास्तुनिष्ठता और सत्यता की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। गहरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति में वह बौद्धिक सोच के साथ अंतस्तम में प्रविष्ट होता है। श्रुति में आस्था का तात्पर्य तर्कविहीन मान्यता नहीं है। विज्ञान की बहुत सी बातें तार्किक एवं बुद्धिपरक होते हुए भी आस्था तथा विश्वास के अभाव में मान्य नहीं होती। अतः विश्वास जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोगी एवं अनिवार्य है। विशेष रूप से धार्मिक विश्वास तो सर्वदा ही अत्यंत उपयोगी है। पास्कल ने इसे उस प्रकार का जुआ कहा है, जिसमें कभी किसी को हानि हो ही नहीं सकती। ईश्वर है यह दाव हमें अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि इसके हानि लाभ पर विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि ईश्वर की मान्यता से सब कुछ की प्राप्ति होती है और इसकी अस्वीकृति से सब कुछ चला जाता है। तब क्यों न यही स्वीकार किया जाए कि ईश्वर है। पास्कल का दांव सचमुच ईश्वर में आस्था का बहुत बड़ा आधार है। इससे लाभ की ही संभावना है। यदि असफल भी हुए तो हानि हो ही नहीं सकती, तो क्यों न ईश्वर में आस्था एवं विश्वास किया जाए। विश्वास के कारण भी दैवी प्रकाशन एवं श्रुति, जो धार्मिक ज्ञान के आधार स्तंभ हैं, प्रामाणिकता सिद्ध होती है। प्रामाणिकता की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी उपयोगिता है। धार्मिक विश्वास हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है। रहस्यवादियों के कथनों में हमें विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि वे कथन जीवन में चरितार्थ भी किए जाते हैं। इससे बढ़कर धार्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता क्या हो सकती है? पृष्ठ संख्या 288, शीर्षक है तीसरा, कुछ विशिष्ट ज्ञान की शाखाओं द्वारा किए गए आक्षेप और उनका निराकरण। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं ने धार्मिक ज्ञान के विरुद्ध कई आक्षेप प्रस्तुत किए हैं। यदि उन आक्षेपों का निराकरण कर दिया जाए तो वास्तविकता का पता चल सकता है और धार्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता भी सिद्ध की जा सकती है। स्वयं विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र की कुछ शाखाओं ने इसके विरुद्ध आक्षेप प्रस्तुत किए हैं, विशेष रूप से फलवाद एवं तर्कमूलक भाववाद धार्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता के विरुद्ध जान पड़ते हैं। हम उनके आक्षेपों की विवेचना तथा निराकरण प्रस्तुत करेंगे। इसमें बिंदु अ है विवेकीकरण या रेशनलाइजेशन। विज्ञान के आलोक में धार्मिक ज्ञान को लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं, परंतु वैज्ञानिक सिद्धांत को सत्य स्थापन के लिए जिस प्रकार विवेकीकरण की कसौटी को ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार धार्मिक ज्ञान के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जिससे धार्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध की जा सकती है। धर्म और विज्ञान में ऐसे अनुभवों को विवेकयुक्त बनाया जाता है जिनका संबंध वस्तुगत सत्य से होता है, चाहे वह सीमित रूप में ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए डाल्टन का आणविक सिद्धांत ले सकते हैं। इसके द्वारा केवल भौतिक तथ्यों की व्याख्या ही नहीं, बल्कि इसकी शक्ति उन अन्य तथ्यों के विवेकीकरण में भी देखी गई, जिसका पता उनके अन्वेषकों को नहीं था। अतः इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कि हम विश्वास न कर लें कि डाल्टन के सिद्धांतों में कोई सत्यता नहीं है। यदि उसमें कोई सत्यता न होती तो उसके द्वारा अनेक तथ्यों या दूसरे तथ्यों की व्याख्या न हो सकती। यदि विभिन्न प्रकार के अनुभवों का विवेकीकरण हो और वह एक समान निष्कर्ष पर पहुँचे तो निश्चित है कि अनुभवों की सत्यता की संभावना में वृद्धि होगी तथा दोषों में कमी होगी। चाहे वह संभावना बिल्कुल पूर्ण न हो तो इतना कम भी नहीं हो सकती कि शून्य के बराबर हो। उदाहरण के लिए अणु के सिद्धांत में नई नई खोजें हुईं, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि अणु का प्राचीन सिद्धांत बिल्कुल गलत था तथा नए सिद्धांत बिल्कुल सत्य और पूर्ण ही हैं। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उसमें सत्य की संभावना है, क्योंकि हो सकता है कि आगे की खोजों से कोई और भी प्रगति इनमें भी हो। यह तथ्य न्यूटन तथा सापेक्षवाद के सिद्धांतों से समझा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार धार्मिक सिद्धांतों के विषय में भी पूर्णता का दावा नहीं किया जा सकता, परंतु जहाँ तक वे अनुभवों द्वारा विवेकीकरण के योग्य हैं, बाद का अनुभव पहले के उस विवेकीकरण को नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि उनका रूपांतरण कर सकता है। विवेकीकरण के पक्ष में थूले के अनुसार यह प्रमाण ठीक ही दिया जा सकता है कि ईश्वर में विश्वास सत्य है, क्योंकि वह हमारे नैतिक द्वंद्व के अनुभव का विवेकीकरण करता है। इसी आधार पर यदि हम यह भी पाते हैं कि ईश्वर का विश्वास धार्मिक अनुभवों के तथ्यों का विवेकीकरण करता है तो प्रमाण अनुपात में सबल हो जाता है। अतः इस कसौटी के आधार पर धार्मिक ज्ञान की सत्यता पर्याप्त रूप में सिद्ध होती है। पृष्ठ संख्या 289। अब बिंदु ब है फलवाद या प्रैग्मेटिज्म। फलवाद ने धार्मिक अनुभूतियों के सत्य के प्रति आक्षेप प्रकट किया है। यह सत्य उसे मानता है जो व्यवहारिक हो। सत्य का समर्थन विचार और वस्तु के संदर्भ में होना आवश्यक है। अब शीर्षक है निराकरण। सत्य का समर्थन विचार और वस्तु के समर्थन के समान नहीं हो सकता। सत्य केवल जैविक आवश्यकता तथा सामाजिक समायोजन के लिए नहीं है। वास्तव में सर्वोच्च समायोजन तभी प्राप्त हो सकता है जब अपने निम्न स्व को अपने उच्च स्व के साथ समायोजित कर लिया जाए। इस प्रकार समायोजन सामाजिक समायोजन से श्रेष्ठ माना जा सकता है। विज्ञान से भी बढ़कर धर्म सामाजिक समायोजन के लिए अधिक उपादेय सिद्ध हुआ है। अतः इस दृष्टिकोण से व्यवहारवाद की कसौटी को रखते हुए धर्म को अन्य सामाजिक या प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक सिद्ध किया जा सकता है। बिंदु स है तर्क मूलक भाववाद। यह अनुभववाद का अतिवादी रूप है। वह ऐसे अतींद्रिय पदार्थों की सत्ता स्वीकार नहीं करता जिनका हमारे इंद्रिय जन्य अनुभव से कोई संबंध नहीं है। तर्क मूलक भाववाद ने भाषा तथा प्रतीकों या सेमेंटिक्स के विश्लेषणात्मक अध्ययन के पश्चात यह बतलाया है कि किसी कथन या वाक्य की सार्थकता उसके समर्थन या वेरिफिकेशन पर ही निर्भर है, अर्थात केवल वे ही वाक्य सार्थक हैं जिनका हमारे इंद्रिय ज्ञान से कुछ संबंध हो और इंद्रिय जन्य अनुभव के आधार पर जिनकी परीक्षा या समर्थन संभव हो। चूंकि धार्मिक अनुभव इंद्रिय जन्य नहीं होते तथा रहस्यवादियों के कथनों की सार्थकता समर्थन योग्य नहीं है, अतः इनकी कोई प्रामाणिकता भी सिद्ध नहीं हो सकती। शीर्षक है आलोचना। इसमें पहला बिंदु है तर्क मूलक भाववाद पूर्णतया दोष रहित सिद्धांत नहीं है। इसकी अपनी कमजोरियां हैं। इसका समर्थन का सिद्धांत इस कल्पना या एजम्पशन पर निर्भर है कि हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में अनुभवात्मक या एम्पिरिकल अनुभवों से प्राप्त होता है, परंतु यह उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका ज्ञान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अनुभवों से प्राप्त नहीं होता, फिर भी उनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। एक क्षण के लिए हम अतींद्रिय अनुभवों को अर्थहीन मान सकते हैं, परंतु विज्ञान के बहुत से सत्य जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एनर्जी आदि कहाँ तक सही माने जा सकते हैं? क्या वे स्वतः प्रमाण सिद्ध हैं, यद्यपि उनका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, परंतु क्या उनकी घटनाओं को नहीं देख सकते? इसी प्रकार धार्मिक ज्ञान अतींद्रिय होते हुए भी क्या व्यवहारिक नहीं है? यदि है तो क्या उनकी प्रामाणिकता में अविश्वास किया जा सकता है? उत्तर होगा नहीं। अब बिंदु दूसरा है केवल व्यवहारिक उपयोगिता के कारण सत्य असत्य की खोज नहीं हो सकती। यदि तर्क मूलक भाववाद के समर्थन का सिद्धांत व्यवहारिक उद्देश्य पर आधारित है तो वह पूर्णतया प्रामाणिक ज्ञात नहीं होता, क्योंकि कुछ समय अर्थहीन या गलत वस्तुएं भी हमारे उद्देश्य के लिए पर्याप्त सिद्ध होती हैं और उनकी व्यवहारिक उपयोगिता के कारण हम उनकी सत्यता तथा असत्यता की खोज आगे नहीं करते। ऐसी वस्तुएं अपनी व्यवहारिक उपयोगिता के कारण सत्य ज्ञात होती हैं, तब तो सत्य तथा असत्य में कोई अंतर नहीं है। अतः निश्चित है कि तर्क मूलक भाववाद की यह अवस्था ग्रहणीय नहीं है। पृष्ठ संख्या 290। तीसरा है तर्क मूलक भाववाद की कल्पना समर्थन योग्य नहीं है। हमारे सभी अनुभवात्मक ज्ञान में ज्ञाता, अंतरस्थ या इमेनेंट तथा सर्वातिशायी या ट्रांसेंडेंटल दोनों होता है। सभी ज्ञान ज्ञाता को ज्ञात होते हैं, परंतु ज्ञाता स्वयं सभी ज्ञान से परे होता है। यह तथ्य किसी अनुभवात्मक ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, परंतु बिना इसके ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञाता सभी ज्ञान के लिए पूर्वकल्पित है। यदि ज्ञाता का अनुभवात्मक ज्ञान असंभव कहा जा सकता है, तो इसके आधार पर उसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि सभी ज्ञान केवल अनुभवात्मक रूप में ही प्राप्त होते हैं, जैसा कि तर्कमूलक भाववादी कहते हैं, तब तो ज्ञाता का भी ज्ञान उसी से होना चाहिए, परंतु इसका या ज्ञाता का ज्ञान अनुभवात्मक रूप में कभी नहीं होता। वास्तविक ज्ञाता तो सदैव अनुभव के परे रहता है। क्या तर्कमूलक भाववादी ज्ञाता के अस्तित्व को अस्वीकार कर सकते हैं? नहीं, वे इसे अस्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि वे कहेंगे कि यह प्रश्न ही अर्थहीन है, क्योंकि इसके समर्थन की संभावना ही नहीं है। ऐसा कहने में वे यह कल्पना करते हैं कि अनुभवात्मक ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिसके द्वारा ज्ञाता का ज्ञान प्राप्त किया जाए, परंतु उनकी इस कल्पना का प्रमाण क्या है? क्या वे इसका समर्थन कर सकते हैं? नहीं, इस प्रकार उनकी कल्पना ही असमर्थन योग्य तथ्य पर ही आधारित हैं, जो कि समर्थन के सिद्धांत के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिंदु चौथा है, तर्कमूलक भाववाद ईश्वर की सत्ता को अप्रमाणित सिद्ध नहीं कर सकता। समर्थन का सिद्धांत ईश्वर या सत्ता की अनुभूति के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। वह केवल यही सिद्ध करता है कि ईश्वर या सत्ता के अनुभव का समर्थन इंद्रियजन्य प्रदत्त या सेंस डेटा के आधार पर नहीं किया जा सकता, परंतु कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि ईश्वर या सत्ता का समर्थन इंद्रिय प्रत्यक्ष के ही रूप में हो सकता है। अतः इस तथ्य के आधार पर कि ईश्वर या सत्ता इंद्रिय प्रत्यक्ष के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता, हम यह भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि ईश्वर या सत्ता का अनुभव या विचार अर्थहीन है। अगला शीर्षक है चौथा, रहस्यवादियों के व्यक्तित्व को गुणों के आधार पर धार्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता। धार्मिक ज्ञान से परिपूर्ण संतों और महापुरुषों के जीवन से संबंधित विचार तथा उनके व्यक्तित्व के गुणों को प्रकट करके प्रामाणिकता पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि प्रामाणिकता के लिए वे समाज और जीवन में स्मारक चिन्ह के रूप में सदैव ही विख्यात रहे हैं। धर्म के अनुमोदकों ने यही दावा किया है कि धार्मिक ज्ञान स्वतः सिद्ध तथा स्वतः प्रामाणिक है। हमारे विचार को यह अधिकार नहीं कि उसकी प्रामाणिकता का निर्णय दें। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि तब तो कोई व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि मुझे धार्मिक अनुभूति हुई है, क्या उसके इस कथन पर विश्वास किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह कहकर दिया जा सकता है कि मात्र कह देने से विश्वास नहीं किया जा सकता। धार्मिक अनुभूतियों से पूर्ण उस रंग में रंगा व्यक्ति कुछ भिन्न होता है। पृष्ठ संख्या 291। उसके आचार व्यवहार तथा क्रियाकलाप ही उसके अनुभवों के प्रमाण होंगे। यदि किसी विश्वास की आंतरिकता में सच्चाई है तो उस विश्वास की अभिव्यक्ति होगी कार्यों और व्यवहारों में, और उसी के द्वारा विश्वास की बौद्धिकता तथा प्रामाणिकता का पता चलेगा। हो सकता है कि धार्मिक अनुभूति तक हमारी पहुँच न हो, परंतु उस अनुभव को प्राप्त करने वाले तक तो हमारी पहुँच हो सकती है। ऐसा व्यक्ति संसार के परे भी है और संसार के अंतर्गत भी। उसका संबंध असंबंधित तथा संबंधित चेतना दोनों से रहता है। जब वह असंबंधित चेतना में रहता है तो उच्च आत्मा के साथ रहता है। यह अद्वैत चेतना की अवस्था कही जा सकती है, परंतु जब वह संबंधित चेतना में रहता है तो आदर्श मानव बनकर हमारे बीच रहता है। वह व्यवहार जगत में बिना फलाकांक्षा के अनासक्त रूप में व्यवहार करता है। उसकी मनोवृत्ति तथा चरित्र में परिवर्तन आ जाते हैं और ऐसे पुरुष का अवश्यमेव स्वागत होता है। ऐसा मनुष्य नैतिक मनुष्य से भिन्न कोटि का होता है, क्योंकि नैतिक या आदर्शवादी व्यक्ति सदैव अनुग्रह तथा कर्तव्य बुद्धि के दबाव में रहता है, परंतु ईश्वरीय अनुभूति को प्राप्त हुआ व्यक्ति लोक संग्रह का कार्य करता हुआ भी अनुग्रह तथा कर्तव्य बुद्धि के दबाव में नहीं रहता। वह भौतिक सुखों में लिप्त नहीं रहता। संसार का कोई भी रहस्यवादी ऐसा नहीं रहा है जो भौतिक सुखों में लिप्त रहा हो। उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ उसके वश में रहती हैं और वह सभी प्रकार के भय से परे रहता है। सांसारिक भय तो क्या, उसे मृत्यु तक का भय नहीं रहता। वह किसी के लिए कष्ट का कारण नहीं बनता और न कोई उसे कष्ट का अनुभव ही करा सकता है। वह तो संपूर्ण प्राणियों को आत्मा ही में और उसी संपूर्ण प्राणियों में देखता है। वह इस दृष्टि के कारण किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि जिस समय ज्ञानी के लिए सब प्राणी आत्मा ही हो गए, उस समय उस अभेददर्शी पुरुष को क्या शोक है और क्या मोह। वह प्रेम स्वरूप होता है। उसके अंदर अहिंसा भाव पूर्णतया दृढ़ तथा स्थिर हो जाता है। ऐसा महापुरुष अपनी या निम्नतर आत्मा को जीत लेता है और आत्म प्रभुत्व की शांति प्राप्त कर लेता है। तब इसकी सर्वोच्च आत्मा समाधि में स्थित रहती है। वह सर्दी गर्मी में, सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है। वह कुटस्थ अर्थात अविचल, परिवर्तनहीन, दृढ़ स्थिर और शांत होता है। उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर या स्वर्ण खंड एक जैसे है। ऐसे महापुरुष मित्रों, साथियों और शत्रुओं में, तटस्थों और निपक्षों में, द्वेष रखने वालों तथा संबंधियों में, संतों और पापियों में एक सा भाव रखते हैं। धार्मिक महापुरुष इन आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्रायोगिक स्तर पर लाकर प्रमाणित करते हैं। ऐसा भी कहना चाहिए कि उनका संपूर्ण जीवन उन अनुभूतियों का प्रमाण स्तंभ है। वे स्मारक चिन्ह के रूप में होते हैं। इससे बढ़कर धार्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता क्या हो सकती है? अब अगला शीर्षक है पांचवा, धार्मिक ज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता। धार्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता मानव के व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय जीवन में उपयोगी होने से भी सिद्ध की जा सकती है। जब हम यह प्रश्न करते हैं कि क्या धार्मिक ज्ञान सत्य है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि क्या धर्म मानव जीवन और अनुभूति में कार्यकारी सिद्ध हुआ है। निश्चय ही सत्य संगठनकारी होता है, विघटनकारी नहीं। सत्य मानव जीवन को संतोष देता है। पृष्ठ संख्या 292। धर्म ऐसा सत्य है जिससे मानव जीवन का समस्त पहलू संतुष्ट होता है। एक ओर धर्म जहां मानव की अनुभूतियों को संतोष प्रदान करता है, वहां दूसरी ओर उसकी ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक वृत्ति को भी संतोष देता है। मानव की ज्ञानात्मक पिपासा जितनी विज्ञान से शांत नहीं होती, उतनी धर्म से होती है। धार्मिक ज्ञान अनुभूति और क्रिया से समन्वित होता है, जबकि वैज्ञानिक ज्ञान अनुभूति को संतोष प्रदान नहीं करता। धर्म सामाजिक जीवन को सजीवता, गतिशीलता एवं संगठन की शक्ति देता है। यदि ऐसा न होता तो आज तक अंतर्राष्ट्रीय जीवन भी अलग विलग हो गया होता और मानव एक ही मानवता के आदर्श का समर्थक न होता। निरर्थक और असत्य वस्तुएं अधिक समय तक नहीं चल सकती। यदि धार्मिक ज्ञान सत्य न होते तो उपयोगी भी न होते तथा मानव आदिकाल से ही इसको जीवन के साथ लेकर न चलता। धर्म की उपयोगिता फलवादी उपयोगिता के सिद्धांत से भिन्न है, क्योंकि फलवादी धर्म की सत्यता उसकी उपयोगिता के आधार पर मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि धर्म सत्य है इसलिए उपयोगी है। दूसरे फलवादी धर्म को साधन मूल्य के रूप में मानते हैं। उनके अनुसार साध्य मूल्य सापेक्ष है, न कि निरपेक्ष। परंतु संतों के जीवन को देखते हुए यही कहना पड़ता है कि धर्म साधन तथा साध्य दोनों मूल्यों में सम्मिलित किया जा सकता है। धर्म की उपयोगिता आंतरिक मूल्य के रूप में भी है। धर्म मानव जीवन में अंतर्निहित है। किसी भी रूप में मनुष्य धर्म से अपना पीछा छुड़ा नहीं सकता। इससे बढ़कर धार्मिकता की प्रामाणिकता क्या हो सकती है? अध्याय 17 समाप्त।